ओम शांति। संगम युग पर भगवान का अवतरण कुछ भाग्यशाली आंखों ने अपने में समा लिया। वो दृश्य भाई जी का, वो स्वरूप हमारे सामने है जिन आंखों ने स्वयं भगवान को साकार रथ में अवतरित होते न सिर्फ देखा लेकिन उनसे जी भर कर मिलन मनाया। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी, आपका इस अकोला और अमरावती की भट्टी में हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। जो बातें इतिहास बन गई हैं, पर उसके पन्ने जितने दोहराओ सुख और आनंद का रस आ जाता है और वैसा जीवन अपना बनाने की प्रेरणाएं हमें मिलती है। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी आज उन गाथाओं को हमारे सामने जीवंत करेंगे जिसमें आपने जिया है। आदरणीय भाई साहब 1957 में ही बाबा का बन गए थे जबकि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे और बाबा के आदेश पर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और 61 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं प्रति समर्पित कर दिया और स्वयं ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले आपको आदरणीय जगदीश भाई जी के संग दिल्ली में रखा तो उनके अंग संग भी सेवाएं करने का आपका विशेष अनुभव रहा। वो भी हम चाहेंगे कि आप अपने क्लास में कुछ कोट करें और उनके संग सेवाएं करते हुए पंजाब में अनेक स्थानों पर सेवा करने और सेंटर खोलने के आप निमित्त बने। उसके पश्चात दिल्ली में फिर चित्रशाला बनी, फिर प्रिंटिंग प्रेस बनी जिसके आप विशेष तौर पर सेवाओं के निमित्त रहे हैं। पहले आप को एडिटर थे जगदीश भाई जी के साथ और जगदीश भाई जी के बाद अपनी जो मासिक पत्रिका छपती है ज्ञान अमृत और वर्ड रिन्यूअल, आप उसके एडिटर हैं, मुख्य संपादक हैं और कितनी तेज गति से उसकी चारों तरफ उन्नति होती जाती है। पूरे विश्व की आत्माओं को ज्ञान अमृत के जरिए जो बाबा का संदेश पहुंचता है वो बेमिसाल है। बहुत सादा सरल जीवन है आपका। आप महसूस करेंगे कितनी सरल सी भाषा में आप बाबा के प्यार के कितने गहन अनुभव सामने वाले को करा देते हैं और एकदम आपको ऐसा महसूस होगा भाई जी के साथ जैसे कि आप अपने घर के किसी बड़े के साथ बैठे हुए हैं, पालना स्वरूप हैं आप। देश विदेश में जाकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य आपने किया है और अभी हमारे सामने साकार में मम्मा और बाबा की पालना की झलकियां हमारे सामने रखेंगे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के सीखे लदे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने ढूंढ करके अपना बच्चा बना लिया, अपना बना लिया हमें। दुनिया ढूंढ रही है लेकिन जानती नहीं है। हमने भी ढूंढा लेकिन ढूंढा उसको जाता है जो कोई चीज हम जानते हैं गुम हो गई हो, लेकिन हमें पता नहीं था क्या गुम हो गया, तो ऐसे ही भटक रहे थे। ढूंढने की बजाय भी भटक रहे थे और स्वयं भगवान ने किसी को कहां से, किसी को कहां से। अब आप भी देखो भाई बहन आए हुए हैं, भिन्न भिन्न शहरों से आए होंगे, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से, कोई ईस्ट से, कोई किसी गांव से, कोई किसी शहर से। किसने ढूंढा? आप मानो किसी प्रदर्शनी में भी गए होंगे, आपको ये थोड़ा मालूम था कि मैं भगवान, ये भगवान ने लगवाए, परमात्मा का ही ज्ञान है कोई है। किसी ने कोई हैंड बिल दिया होगा तो थोड़ा मालूम था परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन स्वयं भगवान ने हमको ढूंढा, अपना बनाया, ये बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है। और आपको ये ज्ञान समझ आ गया, ये ज्ञान इतना क्या के रमणीक तो है ही, अटपटा भी है थोड़ा थोड़ा, यानी समझ के कहीं के बाहर भी होता है, लेकिन आपसे भी को ज्ञान समझ आ गया, ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये भी अच्छी बात है। दूसरा भी, आप कहाँ आए हैं बताओ, यहाँ किस स्थान पर आए हैं? ऐसे स्थान पर आए हैं जहां शिव बाबा ने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर और ग्रेट 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 मदर मम्मा, उनके द्वारा ये सारा कार्य किया है। यहां पर स्वयं शिव बाबा ने ज्ञान मुरली चलाई, ये तो उस वक्त हाल नहीं था जब हम आए थे, ना ये हाल था ना वो हाल था, कुछ नहीं था, सिवाय बीच में जो भी टीन का आप छप्पर देख रहे हैं ना, वही था, ना कोई बिल्डिंग थी ना कोई आसपास वो कुछ था, भंडारा था छोटा मोटा, और जो यीशु दादी का आपने देखा होगा जो ऑफिस, उसके सामने ऐसे गली है, वहां बैठ करके बाबा मम्मा कौन मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बैठ के दो संधलियां होती थी, और बाबा मम्मा पहले मम्मा मुरली चलाती थी ज्ञान बिना, फिर बाबा आकर बच्चों के साथ बच्चों को मुरली सुनाते थे। कितने होते थे क्लास में आप बताइए? मैक्सिमम 20-25, हम जब आए पर उससे भी कम 15-20 मुश्किल से होते थे। तो आज देखो कहां से कहां पहुंच गए हम, अपने 61 इयर्स का बैक देखते हैं इतिहास सेवा का, बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। देखा हमने कैसे सेवाएं शुरू हुई और अब कहां तक पहुंची, कहां 20-25, अब कौन से कहा कि 20-25 हजार, नीचे डायमंड हॉल देखते हैं ना आप, जब अभक्त बाप दादा आते हैं कितनी बड़ी क्लास होती है, सारे ग्राउंड भर जाते हैं, पीछे भर जाता है, वरांडे भर जाते हैं, ये भर जाते हैं, यानी 60 साल में इतना चेंज आ गया है। हम जब ज्ञान में आए थे, अब हम निकले जैसे बहन जी ने कहा पटियाला में हमें ज्ञान मिला, और उस वक्त कितने सेंटर थे, एक बॉम्बे था, दिल्ली में एक दो सेंटर थे, कलकत्ता भी नहीं था, पटना भी नहीं था, कानपुर था, और पंजाब में तो एक सहारनपुर, एक अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, और अमृतसर, एक वो हरगोबिंदपुर, यदि ये सेवा केंद्र 10-12 सेवा केंद्र होंगे, 15 होंगे, और भाई बहन कितने थे, 1000-2000 बस, इतने होंगे। उस वक्त जब हम आए ज्ञान में 1957 की बात है, 2000-3000 इतने होंगे। आज देखो ये हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, और सब संस्थाएं गोइंग डाउन, नीचे जा रही हैं। अभी एक मुरली में बाबा ने इसको संस्था का नाम भी दिया, फर्स्ट टाइम बाबा ने मुरली में संस्था का, मैंने कहा बाबा कभी संस्था कहते नहीं, आज संस्था का, सब जितनी भी हमारे सामने निकली सबका जो है वो डाउनफॉल हुआ, क्योंकि तो पता ही आपको आने वाला कल क्या होगा हमारे लिए, बोलो कैसा होगा, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारों के लिए चढ़ती कला, ऊंचा आगे जाने का होगा, और आने वाला कल दुनिया के लिए डाउन होगा, क्योंकि हम तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं लिफ्ट द्वारा, और वो डाउन उनको जाना ही जाना है, ऐसा बिल्कुल निश्चय बुद्धि है बिल्कुल। परंतु ये यहां तक हम पहुंचे कैसे, एक दिन में नहीं पहुंचे, छोटा सा बाबा ने लगाया था पौधा, आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया, उसमें कोई बहुत बहुत भाई बहनों का, बहुत परिवारों का, बहुत यानी हमारी दादियों का, बाबा मम्मा का बहुत बहुत त्याग है, तपस्या है, और क्या कहना चाहिए, शक्तियां जिसे सहन शक्ति कहते हैं ना, वो उसमें शामिल है। भले हम लोगों ने कितना अपोज किया, लेकिन हम उसको सहन के या अपोजिशन के, ऐसा है। मैं आप बताऊं, एक बात मैं सुनता हूं ना, बाबा कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूं, कहता है ना, मैं तो साधारण तन में आता हूं। हम भी मुरली में सुनते हैं कई बार, मैं कोई बड़े उसमें किसी बड़े बड़े शंकराचार्य में या किसी बड़े बड़े धनवान अंबानी के तन में नहीं आता हूं। कहा किस में आता हूं, साधारण तन में। लेकिन मैं ये समझता हूं ब्रह्मा बाबा भी साधारण नहीं थे, ये मेरा अपना अनुभव है। ही वॉज नॉट साधारण। मैं आपको सुना तो, जब हमें ये ज्ञान मिला, अभी उस बाबा से मम्मा से नहीं मिले थे, हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक भाई था ओम प्रकाश भाई, उसने हमको पहला पहला लेसन शुरू किया, क्योंकि आप जानते हैं आज आप ज्ञान सुना बाबा का औरों को सुनो, ये नहीं कहता कि तुम पूरे बन किताब सुनो, पहले सुनाना शुरू कर देते, पहले अगले दिन से अच्छा लगता है हम सुनाते हैं। तो उसने आत्मा का ज्ञान दिया, हमने कहा कि नहीं हम तो आत्मा नहीं है, हम तो शरीर है, देखो ये मशीनरी है, जबकि पुर्जा खराब होगा तो खत्म हो जाएगा। मतलब उन्होंने सुना सुना के दो चार दिन में पक्का कर दिया कि आप आत्मा है। हमने कहा ठीक है, हम तो आत्मा ही मान लेते हैं, मानते तो थे ही, बचपन में भक्ति वगैरह बहुत की हुई थी, बस इतना ही मानना था कि मैं आत्मा हूं। आप मानेंगे उसी वक्त से अनुभूति होनी शुरू होगी, उसी दिन से। बस फिर मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल की बात है, एक ही बात मानने से इतना वो कंटेंटमेंट, खुशी, हल्कापन, बॉडीलेसनेस, क्योंकि उस समय तो कोई स्टूडेंट बहुत कम थे, बाबा भी फ्री थे, तो जल्दी जल्दी अनुभव होता था, ये देखा हमने। तो हमने कहा भी और भी सुनाओ ज्ञान क्या है, कैसा है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उन्होंने सारा आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर झाट उसमें झाटे मूर्ति छपे थे सब बातें सुना दी, जो जो सुनता था मुझे इतना अच्छा लगे, मेरा कमाल है। जो हमने भागवत पुराण ये चीजें पढ़ी हुई थी, छोटा मोटा गीता वीता 10 साल की उम्र में पढ़ी थी, सारी बातें जैसे रिवील हो रही है, बहुत बहुत खुशी हुई। आप देखो आपने भी ज्ञान सुना था पहले पहले दिन, खुशी हुई कि नहीं हुई बताओ, ज्ञान सुनने पर भी खुशी हुई कि नहीं, बहुत खुशी होती, कितना, मैं तो कहता हूं मैं वंडरफुल ज्ञान है, वंडरफुल और रैशनल है, कोई भक्ति मार्ग का अंश नहीं है, साइंटिफिक है। आई टेल यू, कोई अगर कहे ना अभी साइंस जो चीज प्रूव कर रही है, बाबा ने पहले बता दिए चीजें, रीजनेबल है, ऐसे नहीं कि आप मान जाओ, नो, रीजन करो आपको जवाब मिलेगा, और प्रैक्टिकेबल, अनुभव युक्त है। आप हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, अब देखो ये आया और आंखों में देखो क्या हो गया, जैसे आंखें नम होगी, केवल एक ही बात से बाबा कहा और खुशी आती है, तो अनुभव नहीं और क्या है ये, यानी अनुभवी अनुभव युक्त ज्ञान है, प्रैक्टिकेबल है, बुद्धिगम्य है। इस ज्ञान को सुनकर इतना मजा आया, मैंने कहा ये कमाल है, तो मिलना चाहिए जिस जिस द्वारा ये ज्ञान मिल रहा है उसको मिलना चाहिए। हम साथ, बाबा कहते ना जिसको निश्चय होगा तो रुक नहीं सकेगा, हम भागे बाबा से मिलने, 7-8 दिन में भागे और पहुंच के बाबा उन दिनों में मधुबन में न रह करके कभी दिल्ली कभी बम्बे जाते थे सर्दियों में, तो यहां तो बहुत सर्दी पड़ती थी, अभी तो इतनी पड़ती, इतनी बारिश होती थी, इतनी सर्दी होती थी, बात मत पूछो, अब तो सीजन सब बदल गया, तो जहां पंखे नहीं चलते तब, अभी तो पंखे चलते हैं, एसी लगता है, वहां बिल्कुल ठंडा मौसम होता था, सीजन बदल गया। तो हम बाबा से मिलने पहुंच गए दिल्ली में, तो मैं कहा ना साधारण तन है, मैं इस बात को अपने अनुभव से कहता हूं, वो असाधारण तन था। बाबा को जब हम पहली बार मिले, बाबा मम्मा गद्दी पर बैठे थे सुबह सुबह, बाबा को देखा, शाइनिंग फेस, मैं 20 साल का था और बाबा 80 साल के थे, हम तो देखो कैसे बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे, और बाबा तो लगा के ना वो चांग पे चांग चला के ऐसे बैठे। अब बताइए 80 साल के बुजुर्ग होंगे, 80 साल के तो ऐसे बैठे थे। वो साधारण काम हुआ, हेल्थ अच्छी थी, चेहरा चमकदार था, आंखें खींचने वाली थी, बिविचिंग आईज। तो देख के हम मोहित हो गए। मैं कहता हूं मैंने आज तक सारी लाइफ में ऐसी पर्सनैलिटी नहीं देखी। हम बताया तो हम कैसे कहते साधारण था, असाधारण। हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर थे फॉरेन के, बहुत देखते थे नथिंग, और बहुत लोगों को देखा, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी थी एक बड़ी अट्रैक्टिव, शाइनिंग और बिविचिंग देख के ही। अब मम्मा भी ऐसे, जैसे कि दोनों बाबा मम्मा ऐसे थे जैसे कि फरिश्ते बैठे हुए। पहला हमारा बाबा मम्मा को मिलने का एक्सपीरियंस ये हुआ, और यही निश्चय हुआ कि यही हमारे लौकिक अलौकिक परलौकिक माता पिता है। निश्चय तो पहले था ये भगवान का ज्ञान है, कोई इंसान नहीं दे सकता। आप बताइए, आप ज्ञान की एक एक पॉइंट को देखिए। अभी कुछ दिन पहले आया था, बड़ा मजा आता है जब ज्ञान सुनते हैं। क्या बाबा कहते हैं, बच्चे ये रावण में आत्मा नहीं है, था ना एक एक पॉइंट, परंतु आत्मा में रावण है। आप बताइए, ये बाबा की पॉइंट थी कि रावण में आत्मा नहीं, इतनी उसके दासर बनाते हैं, जलाते हैं, ये करते हैं, कितना आडंबर करते हैं बताओ। और बाबा ने कह दिया रावण में तो आत्मा है नहीं, और सब आत्माओं में रावण प्रवेश है। अब देखो ये कितनी गहरी पॉइंट है, सारी फिलॉसफी इसमें आ जाती है। ये देखो आप बाबा क्या कहते हैं, देखो हमारे कितने शास्त्र, रामायण है, महाभारत है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। रामायण क्या है, देखो इतना लोग मानते हैं रामायण को, वो अभी तक भी झगड़े चल रहे हैं, राम का मंदिर, ये मंदिर सब मानते हैं। राम था, सीता चुरा के ले गया, रावण ले गया, मूर्छित हुआ, बाण मारा जटायु, इतनी बातें कर कर करके हम बड़ा रोचक, हम भी सुनते थे बड़े, सीता चुराएगी, आंसू आते थे। बाबा ने क्या कहा इस रामायण के बारे में बताओ, एक ही शब्द बोला, क्या हुआ? अरे बच्चे ऐसा रावण तो कभी था ही नहीं, सारी रामायण खत्म। विचार करो, यानी ये बाबा ने कहा कि ऐसा तो रावण दसरे वाला होता ही कोई नहीं। आप सोचो ये बुद्धि हमारी क्या कहती है कि दसरे वाला कोई इंसान होता है, पता नहीं अक्ल हमारी काम मारी क्योंकि लोगों के काम उनके लोग नहीं कहते, अपनी हम कहते हैं दसरे वाला रावण तो कभी होता नहीं था, सोता कैसे होता, खाता कैसे होगा, अभी हम आर्गूमेंट करते हैं। बाबा ने कहा ये तो था ही नहीं, तो सारी की सारी जो रामायण की कथा है वो उसका सारा बेस ही खत्म हो गया। और बाबा कहता सीता चुराई नहीं जा सकती, राम की सीता कोई चुरा सकता है? कितनी वंडरफुल बातें हैं, कितनी अथॉरिटी वाली बातें हैं, ये कौन कर सकता है? जो ऑल माइटी अथॉरिटी कह सकता और इंसान नहीं कह सकता। देखो दुनिया झगड़ा करने लग जाए, भगवान ने कहा ये, ऐसा कभी हुआ नहीं। आप सीता है, मैं राम हूं, तुमको तुम रावण जो पांच विकार है वो ले जाता है, मैं तुमको छुड़ाकर अयोध्या में जहां अयोध्या होता है वहां ले जाता हूं। कहानी तो ये है, उन लोगों ने क्या बना दी। बस आइए इसी तरह उसको देख लो, महाभारत को कितना युद्ध दिखाते हैं, ये दिखाया वो दिखाया, इतने तीर दिखाते हैं वो दिखाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तो मैंने तो ज्ञान द्वापर में दिया नहीं, सत्य कलयुग के अंत में दिया था, वो सारी गीता रामायण सब वो सब खत्म हो जाती। कैसे, कौन बोल रहा है ये? तब सोचा नो ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक लाइक दिस, गॉड हिमसेल्फ, स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी के ही ये महावाक्य हो सकते हैं, किसी इंसान के नहीं हो सकते। आ बात के ठीक नहीं, बोलो ठीक है कि नहीं? आप बताइए फिर कौन पढ़ा रहा है हमको, हमारा साथी कौन है? स्वयं भगवान। बताओ फिर क्या करना चाहिए, ये भी सोचो, फिर ये भी सोचो, भगवान आया हुआ हमारा साथी है, हमें वो पढ़ा रहा है, हमें ले जाएगा वो, तो क्या करना चाहिए? फिर मैंने भी सोचा क्या करना चाहिए, यही निश्चय किया फर्स्ट बाबा मम्मा से मिलने पर, जो बाबा का कार्य वो हम बच्चों का कार्य, बस ये निश्चय कर लिया। देख उस दिन से ही ज्ञान सुनने के बाद ही कर लिया, फिर मिलने के बाद और पक्का हो गया। मेरे से पूछा, हम रशिया गए थे, मेरे से पूछा व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट डे, आपका सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा था? मैंने कहा मेरा खुशी का दिन जिस दिन ज्ञान मिला मुझे, तो खुशी का दिन वो लगा। क्या काम किया है, बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है ये। ज्ञान मिलने से बहुत खुशी होती है, फिर जब बाबा मामा मिले और खुशी बढ़ के, देखो भगवान मिला, बाबा मामा मिले, अपने ओरिजिनल माता पिता मिले, जिसको मिल जाए, बिछड़े हुए बच्चों को बाप मिल जाए, माँ मिल जाए, तो कितनी खुशी होती है। तो तब बाबा से जब मिले तो पहला वरदान बाबा ने गोद में लेके क्या कहा पता है आपको? मुझे कहा, बच्चे तुम इंजीनियरिंग पढ़ते हो, 4-5 साल लगेंगे, विनाश तो सामने खड़ा है। बोलिए, उस वक्त भी कहा, और लगता भी था विनाश सामने खड़ा है, जैसे अब लगता है ना कभी क्या हो जाए क्या, उस वक्त भी ऐसे लगता था। उसमें नैर स्वेद का झगड़ा था, कई झगड़े थे, लगता है अभी लड़ाई हुई कोई, अभी लड़ाई हुई कोई। तो बाबा कहा, विनाश तो सामने खड़ा है। मैंने कहा, फिर बाबा तू सेवा में लग जाओ, ऐसा कोई बाबा ने बोला? तो मैंने कहा, ठीक है, हमें तो पहले वैराग आ ही चुका था। तो हम जब वापस आए बाबा मामा से मिल करके, और सारा परिवार मिला वहां पर, मुझे बहुत खुशी होती है वहां। उन दोनों में सेवाएं कम थी, और भाई बहन तो बहुत थे, दादियां बहुत थी, दादियां मिली, दीदियां मिली। हमारे दादा विश्व किशोर थे, जो कि बाबा के राइट हैंड थे, उन्होंने मुझे ऐसा बाकी पाई जैसे कि 5000 वर्ष के बाद हम मिल रहे हैं, इतनी जोर से बाकी पाई। जगदीश भाई मिले, बड़े प्यार से मिले। उस पूरे परिवार को देख के जो थोड़ा था, लेकिन बहुत खुशी हुई, ये हमारा इतना बड़ा ऊंचा परिवार है। फिर हम आए अपने पटियाला में, हमने एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा, और बाबा का भी इंग्लिश में जवाब आया। जब मैं बताता हूँ क्या लेटर लिखा था, देखिए, बड़ा वैराग हो गया ना, क्या भगवान आया हुआ, मैं वो जो कार्य कर रहा है, मुझे वो कार्य करना चाहिए ना। मैं लिखा, मैंने बाबा, आई डोंट वांट टू, इंजीनियर क्या करता है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए ह्यूज एडिफिस, जो बहुत बड़ा महल बना रहे हैं सचों की, उसमें एक मैं भी स्टोन बनना चाहता हूँ, एक पत्थर मैं भी लगना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा, आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड हाईवेज, परंतु आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम, देन कमिंग टू गोल्डन एज। फिर लिखा मैंने, बाबा आई डोंट वांट टू बी डिजाइन मशीनरी, बट आई वांट टू बी, बाबा हमेशा कहते थे ये ब्रह्मा कुमारी जो है किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है, मैं उसका एक पुर्जा बनना चाहता हूँ। तो बाबा के पास पत्र पहुंचा, और 2 दिन में जवाब आया, बच्चे बी पेशेंट, ये बाबा के माँ बाप के लिखत में लाल अक्षर लिखते थे बाबा, और ईशुदारी वो दादा बच्चों उसको पढ़े हिंदी में लिखते थे, बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर पेरेंट्स, ये बाबा की आज्ञा थी। हमने भले और कई आज्ञा ना मानी हो, भाई 8 घंटे योग लगाओ, नहीं हो सकता, लेकिन जो बाबा ये डायरेक्शन देते थे हम वो जरूर मानते थे। तो हमने खूब फिर ज्ञान दिया अपने इंजीनियर्स को, प्रोफेसर को, जो मिलता था हम वो, फिर त्रिमूर्ति जहां भी छाप के आगे थे वो फ्रेम करा करके होटल के बाहर खड़े हो जाना, कोई देह अपमान नहीं, कभी किसी को समझाना। बाबा कहता है जैसे ये देख भी लिया ना तुम्हारी प्रजा में आ जाएगा, बाबा उन्होंने मुझे कहते थे समझाओ सबको ऐसे। तो सबको ज्ञान दिया, तो हमारे हॉस्टल में हमने अपना छोटा सा कमरा था, उसको गीता पाठशाला बना लिया हॉस्टल में ही, वहां पर वो शिव बाबा था नहीं उन दोनों में, बलाल बल्ब लगाया और ग्रामोफोन वाला वो सुई वाला होता ना वो रिकॉर्ड बजाया, तू प्यार का सागर है रोज बजाते सुबह सुबह, वो वार्डन क्या तुम लोगों को क्या हो गया है, यहां से निकलो। तो हमने लिखा छोड़ते हैं, हम आपका हॉस्टल ही छोड़ दिया, बैर जगह ली और अपना गीता पाठशाला को सेंटर को वहां खोल दिया, वहां दादी जानकी जी आया, कई दादियां आई, इस प्रकार से सेवा शुरू कर दी। नो, हमें कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, आई वॉज स्टडिंग विदाउट इंटरेस्ट आई कैन यू। फिर जिससे कि लोग कहे इस आदमी को क्या हो गया कोई पता नहीं, हमें तो एक नशा था, मोमेंटम था, एंथुजियाज्म था कि भगवान आया है सबको ज्ञान देना है, लेटर लिखना अपने दोस्तों को भी आप आगे ज्ञान सुनो। इस प्रकार से सेवाएं चालू की, तो कोई निकले लोग, कईयों को बाबा मामा से मिलाया, कोई रहे कोई चले गए, वहां एक छोटा सा सेवा केंद्र बन गया पटियाला में। फिर हम लोग के घर के बाबा ने कहा अपने लोग एक परिवार को भी ज्ञान दो, हम आपको बताए गए, माता जी को ज्ञान दिया, पिताजी को ज्ञान दिया, लोग माता पिता भाइयों को दिया, सबको ज्ञान, गांव वालों को भी सुनाया। तो हमारे लौकिक पिताजी एक बात कहते थे, ज्ञान आपका सच्चा लगता है मुझे, क्योंकि वो बहुत भागवत पढ़ते थे, बहुत श्री कृष्ण को याद करते थे, वो रात रात भर वो पढ़ के ना भागवत पुराण अपने गले उसमें रख देते थे, सो जाते थे। मुझे कहते अगर आपका बाबा हमें कोई दिखा दे तब हम मानेंगे, दिखा मैंने साक्षात्कार करा दे। मैंने कहा मुझे तो आज तक हुआ नहीं है, मैं तो बाबा मम्मा से मिला हूं, साहब से मिला हूं, मुझे तो मिला नहीं, आपको कैसे कराएगा। फिर भी हम बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या हुआ हम जब हम भोग लगाने बैठे गुरुवार को, वो भी सब बैठ के हम भी बैठ के, तो वो उठ के खड़े हो गए बीच में ही, तो उठ के खड़े हो और वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते, कभी यहां पकड़े, कभी यहां पकड़े, कभी यहां पकड़े, कभी यहां पकड़े। मैं कहूं कुछ ना कुछ तो हो रहा है जरूर, समथिंग इज हैपनिंग, आई वॉज वेरी हैप्पी कि समथिंग इज हैपनिंग। तो वो फिर वो बड़े उदास होकर नीचे आए, मैंने क्या हुआ पिताजी, कहते मैं कहीं गया, मुझे बहुत सुंदर वो श्री कृष्ण के भक्त वो थे बड़े प्यार करते थे उनको, छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण मेरे सामने आया, मैं पकड़ता हूं तो यहां से वहां चला जाए, वहां से वहां चला, मेरे हाथ में नहीं आया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, फिर क्या बाबा जी आपके फिर आए, उन्होंने कहा यदि तुम पूरी धारणा करोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, सब चीज खान पान ठीक करोगे, तभी आप श्री कृष्ण आपकी गोद में आएगा। उन्होंने कहा तो इतने थे तो 50 साल के ऊपर ही थे, बुजुर्ग टाइप के थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं फटाफट करता हूं। तो अगले गुरुवार फिर उनके श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, उनके बड़े आंसू बहाए, बड़ा उन खुश हुए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो सब जो गांव वाले बैठे थे, हमारे लोग एक परिवार वाले कहते थे कमाल हो गया है, इनको तो साक्षात तैयार हो गए, हम तो ऐसे बैठे रहेंगे, सभी परिवार वाले लगभग निश्चय बुद्धि हो गए। तो बाबा ने कहा था अपने परिवार वालों को ज्ञान दो, सारा परिवार हमारे भाई बहन सिस्टर और वो आसपास के जो थे चाचा वाचा सभी ज्ञान में चलने लगे कि कोई बहुत बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो बाबा की ये बात भी जो थी हमने पूर्ण की, और वो अंत तक हमारे लौकिक पिताजी एट दी एज ऑफ 92 अभी 15 साल हुए, अभी यहां मधुबन में ही शरीर छोड़ा उन्होंने। हमारी लौकिक माता ने 111 साल की एज में ही शरीर छोड़ा, वही हमारे साथ रहती थी। इस प्रकार से जो बाबा की आज्ञा की थी कि तुम सब घर वालों को ज्ञान दो, तो देना शुरू किया, और हम भी 4 साल बीत के किसी न किसी प्रकार से कोई स्टडी नहीं किया, हमने लेक्चर मिस करते थे, आज बाबा आ रहे हैं, आज मम्मा आ रही है, आज दो दो भोग लगते थे, सब अटेंड करते थे, आज एग्जीबिशन जाना है, तो जब क्लास हमारी मिस होती थी, लेक्चर मिस, हम जब जाते थे तो प्रोफेसर कहता एपी मेहता में बोलते थे, हम यस सर करते तो लड़के हंसते थे कि देखो प्रिंस आ गया है बहुत दिनों के बाद। तो इस प्रकार से क्या होता था, हमने इंटरेस्ट विद डिस इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर भी पता नहीं 4 साल के बाद हम कैसे पास हो गए, आई डोंट नो, ये बाबा ने कुछ करामात की, अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट था नहीं, ना ड्राइंग में इंटरेस्ट था, ना किस चीज में इंटरेस्ट था, ना पढ़ाई में इंटरेस्ट था। बाबा कहते ना अपनी बुद्धि में ये चीजें क्यों डालते हो, फिर निकालनी पड़ेगी, तो हमने बुद्धि में डाली नहीं। इवन देन आई पास, लेकिन सेकेंड डिवीजन पास हम हो गए, लेकिन डिग्री लेने कभी नहीं गए। मैं क्या करेंगे डिग्री लेके, बाबा अगर डिग्री जेब में होगी, कभी कोई परीक्षा आई यज्ञ में, चलो आप नौकरी कर लेते हैं, कोई हमने डिग्री भी नहीं ली, अभी तक नहीं ली थी। अभी हमें कहा आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको एज की डिग्री चाहिए, तो वो लेने ले आया थे ताकि हमारा कितनी एज है वो सर्टिफिकेट चाहिए, पहले हम कभी लेने नहीं गए। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग पास की, लौकिक परिवार भी ज्ञान में आ गया, हमारे सारे लौकिक माता पिता और भाई भी, बड़ा भाई वो भी ज्ञान में आ गया, लक्ष्मण भाई थे, तो हम लौकिक माता पिता को लेकर के बाबा के पास आए। तो बाबा ने कहा मैंने तो पहले कहा था कि तुम्हारी ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, बस अभी तुम सेवा में लग जाओ। उन्होंने मुझे भ्राता जगदीश जी, आप जानते हैं जगदीश जी का नाम सुना है आपने, सुना किसी ने, हाथ खड़ा करो जिनने सुना, वाह कमाल है, बहुत पुराने भाई लगते हैं। तो वो उनके पास भेजा, हम 3-4 साल उनसे ट्रेनिंग लेते रहे, बीच बीच में मधुबन में तो आते रहे, बाबा मामा से मिलते रहे, कई सेवा केंद्र खुले, हमारा पटियाला क्लब, नाभा क्लब, चंडीगढ़ में सेवाएं की, वो और छोटे छोटे सेवा केंद्र खुलते हैं। उस वक्त जब बाबा मम्मा के दिनों में एक कोई बच्चा अच्छा पैदा हो जाए तो बड़ी सारे परिवार वाले खुश होते थे, और फिर उसके बाद कोई सेंटर खुल जाए तो सब परिवार को मालूम पड़ता था। तो आजकल तो रिट्रीट सेंटर खुलता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बाबा का अच्छा बच्चा पैदा होने में सारे परिवार वाले खुश, एक सेंटर नया बनाया तब भी खुशी, और आज देखो हम कहां से कहां पहुंच गए। तो ये मैं कह रहा था, देखो वास्तव में ये इसके पीछे बाबा मम्मा दादियां और कई परिवार के परिवार इसमें सुहा हुए। देखो मैं आपको बाबा की बात सुनाता हूं। बाबा कहते साधारण था, तन तो आप जानते कैसा था, बताया मैंने, मन भी बड़ा दयालु, भक्ति मार्ग में भी मन दयालु था, फराग दिल था, सब कुछ था, धन भी बहुत था। हम बताएं आपको, देखिए उस बाबा की पर्सनैलिटी में बताता हूं। बाबा एक दादा नारायण है ना, बाबा के लड़के, वो सुना रहे थे, हम हर साल कश्मीर जाते थे पूरी फैमिली पहलगाम में, और अपना एक होटल बुक करते, पूरा होटल बुक करते थे, हमारा अपना पंडित रसोईया होता था, हम वहां रहते थे एक मास के लिए। तो एक बार गए, उन्होंने सुनाया, तो वो पहले कितना महीने का देना है पहले वो फिट कर लेते थे, इतना पैसा आपको, आप और किसी आदमी को मत आने दो, पूरा होटल हमारा हो गया, हम आपको इतना पैसा देंगे। एक बार किया, वो चतुर था, जो आगे जो मुसलमान था क्या था, उस जब हिसाब किताब करने लगे वो कहता मुझे इतना और दो, तो वो केस हो गया। मैंने उसका मैं कैसे, बाबा ने मैं कैसे दिया आपको जब आपका पूरा हिसाब है। केस गया उसके कोर्ट में, राजा हरि सिंह का बाप था, उसने सुनाया वहां पर, वो खुद ही केस सुनते थे ये, यानी महाराजा, कोई वहां वो नहीं थे एसडीएम एडीएम नहीं, खुद ही। तो आप बाबा की पर्सनैलिटी देखिए, जब बाबा अंदर गया दरबार में, हरि सिंह की उठ गए, हरि सिंह का बाप उठ के खड़ा हो गया। आप बताइए, उनकी ऐसी इतनी वो थी, देख करके व्यक्तित्व को, वो पहले खड़े होके फिर जल्दी बैठ गए, ओह मैं तो महाराजा हूं और ये जो मेरे कोर्ट में आया। तो बताइए बाबा ने उसको, बाबा को कहा बाबा इनको जैसे कैसे निपटा लो, ये ऐसे लोग हैं। तो मतलब कहने का, इतनी अच्छी, इतनी वंडरफुल पर्सनैलिटी थी कि राजा महाराजे भी, तो वो कहते थे आप बनना तो आपको राजा था महाराजा, लेकिन भगवान ने हमको बना दिया, पर वैसे तो आपको बनना चाहिए था, इतनी ऊंची थी। दूसरा आप देखिए, उन्होंने सुनाया कि उस वक्त हमने 34 या 33 में एक मकान लिया 57,000 का उस वक्त। आप बताइए आज कितना साल हो गए, साल हो गए 82 साल हो गए, 86 साल हो गए, इतना उनके पास वो था। उन्होंने ये सुनाया, देखिए जो दादी ब्रज इंदिरा थी, उनके फर्स्ट लड़के की शादी हुई, जब वो क्या बहू आती है ना घर, और फिर अगले दिन वापस जाती है अपने बाप के पास, कहते 2,90,000 के अंगूठियां गहने उसने पहने हुए थे जब वो गई। आप बताइए कितना धन होगा, सारा सारी सारे तो उनको नहीं पहनाए होंगे, बाबा इतना धनवान थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धन तन भी ठीक था, मन भी ठीक था, और धनवान भी थे। आप बताइए 14 वर्ष तक इतने लोगों की पालना करना यज्ञ की, पर और भी थोड़े लोग आए थे, ये कम बात नहीं है, देखो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा भले कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, परंतु वो बहुत असाधारण बाबा थे। उनका मैं तो कहता हूं बाबा का हर कदम, हर वचन, हर यानी हर बोल, हर कर्म और हर संकल्प साधारण नहीं था, दैट वॉज ऑलवेज विशेष, असाधारण होता था। हम देखते थे बाबा किसी को ऐसी दृष्टि से दे देंगे ना यूं ही, वो ध्यान में चला जाता था, हमने खुद देखा। कई दफा हमारे यहाँ कब्रिस्तान बनता था, अब ये हाल बन चुका था ये, उसके बाद हम सब बैठे क्लास में, क्लास भरी हुई है, बाबा मम्मा आएंगे सबको दृष्टि देते जाएंगे सब लेटते जाएंगे। बाबा की इतनी दृष्टि में पावर थी, किसी पे ऐसे हाथ रख देंगे वो बड़ा खुश हो जाएगा, फूला नहीं समाएगा। यानी बाबा का हर जो कार्य था साधारण नहीं परंतु असाधारण था। इस प्रकार से मैं बता रहा था चित्र, फिर हम 3-4 साल के बाद हम एक दफा आए मधुबन में। एक मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। बाबा उस वक्त फर्स्ट टाइम जब मधुबन आए, 58 होगा या 57 होगा, तब भी 80 साल से ऊपर ही थे। ये जो टेनिस कोर्ट है ना, अभी जो अभी शांति स्तंभ है, ये सब खाली थे तब तो। कुछ मकान बना हुआ था, ये भी नहीं बना हुआ था, ये जो हिस्ट्री हॉल भी नहीं था। बाबा उसमें बच्चों के साथ खेल रहे थे। क्या खेल रहे होंगे आप बताइए? हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, बाबा को दादा मिश्रधन बाल फेंकते थे और बाबा लगाते थे। तो मैंने समझा ये कमाल का खेल, इतनी एज में बाबा धोती कुर्ता पहनते थे। अब तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की, मैं कहा हम फोटो तो ले ले, इतना वंडरफुल चीज है। तो बाबा ने मना कर दिया, खेल बंद किया, मना कर दिया। तो बाबा के महावाक्य सुनिए क्या है। बाबा ने कहा बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ही बोल रहे होंगे, मेरा फोटो नहीं आएगा। पर ये शरीर जो किसी काम का नहीं। बाबा हमेशा अपने शरीर से बच्चों को न्यारा करते थे। अपने को भी शरीर मत समझो, आत्मा देखो, और मुझ में भी क्यों, किसको देखो, उसको देखो, हमेशा ये कहते थे। कोई भी कार्य बाबा से मिलने जाएंगे, बाकी पहनेंगे, कैसे मिलते थे? ऐसे नहीं कि हाथ मिलाते थे या पांव पकड़ते थे, नहीं, बाबा वैसे ना बाकी पहनते। बाबा हमको गोद में लेगा, थपथपाएगा, मुख में टोली खिलाएगा, ऐसे मिलते थे। तो बाबा कहते किससे मिल रहे हो, माने कोई कन्या है, कोई माता है, किससे मिल रहे हो? आप इस तन में शिव बाबा से मिल रहे हो। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझे मिलने हो, मिल रहे हो तो वो शिव बाबा से ही मिलने आ रहे हो, ऐसा अपने में निश्चय रखो, उस रूप से मिलो। तो बाबा मुझे, मैंने कहा ठीक है बाबा, आप कहते तो नहीं खींचते हैं, तो बात तो ठीक, आपका फोटो तो आएगा नहीं, अब आप कहते हैं शरीर तो किसी काम का नहीं, हर एक का, इसलिए हम नहीं निकालते। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आपका दिल है तो बच्चे का दिल हम निकाल लो। मतलब कहने का है हमेशा बाबा अपने शरीर से बच्चों को न्यारा करते थे। ना अपने को शरीर समझो, ना दूसरे को शरीर देखो। अपने को शरीर समझना ये पाप है, और दूसरे के शरीर को देखना ये महापाप है। बाबा तो ये कहते हैं, उसके ऑर्गन्स को देखना, शरीर को देखना ठीक थोड़ा है, आत्मा को देखना है। तो ये बाबा लेसन हमेशा पक्का कराते थे। क्या कहते हैं बच्चे, हर मुरली में अपने को अशरीरी समझो, अशरीर बन के याद करो, हमेशा कहते हैं। तब भी हर सेकंड हर बात में बाबा आत्मा और शिव बाबा को लाते थे, अपने को न्यारा समझते थे। ब्रह्मा बाबा अपने को नहीं, वो कराने वाला है, वो देने वाला है, वो करने वाला है, मैं तो इस बीच में वो हूँ, दलाल हूँ। इस प्रकार से बाबा से पालना लेते लेते फिर बाबा ने हमें वहां भेजा, वहां हमने सब सीखा। जगदीश भाई की जी के साथ बहुत कुछ सीखा। जगदीश भाई वंडरफुल आत्मा थे, महान ज्ञान, महान ज्ञानी थे। आई टेल यू, वो कहता था मैं लिखता हूं, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जो मर्जी बोल दो तो क्या, कौन करता है, बोल दो, आप उसको वापस ले सकते हो। आपने एक दफा लिख दिया उसको फिर वापस नहीं ले सकते। तो जगदीश जी कहते थे बड़ा सोच समझ करके लिखना पड़ता है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, महान ज्ञान था उनमें, ज्ञानी तो आत्मा थे जबरदस्त, महान योगी थे। वो बात करते करते आप उड़ा देंगे, ऐसे किसी के पास जाएंगे कोई काम कराना है, योग में होंगे उसको भी दृष्टि देंगे, फटाफट वो काम हो जाएगा। बाबा उनको बहुत कई काम देते, बच्चे ये काम कराओ, ये काम कराओ, ऐसा करो, बहुत आज्ञाकारी बाबा के, जो कहा फटाफट बाबा का काम करते। इस प्रकार से जगदीश जी के साथ रहे, उनके भी कुछ गुण हमने लेने की कोशिश की। इकोनॉमिकल کم خرچ بالا نشین، ان کی یہ ہیبٹ تھی، یعنی کہ اڑا دو پیسہ ہے تو اڑا دو، نہیں کہتا یہ کس کا پیسہ ہے، ماتاؤں کا بہنوں دوارا دیا ہوا پیسہ ہے، اس کا بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے پر خرچ کرنے والے نہیں تھے، سیوا میں لگانے والے تھے، یہ بتائیں آپ. اور بہت کوالٹیز تھی، پنکچوئل، ریگولر، ہمیں بلائیں گے ہم تھوڑا لیٹ ہوں گے، کہتا آپ لیٹ ہو گئے، میں نے کہا بھائی صاحب ٹریفک، وہ تھا کہتے ٹیلی فون کرنا تھا، ادھر موبائل تو نہیں تھے، اتر کے ٹیلی فون کریں گے اور لیٹ ہو جائیں کسی دکان سے. پنکچوئل تھے، ریگولر تھے، دو دو بجے اٹھ کے لکھتے تھے وہ بہت. یعنی فاؤنڈیشن مارے جو اوم منڈلی کو پرجاپتا برہما کماری ایشوری وشو ودیالیہ کے بنانے میں ہی واز دی فاؤنڈیشن. آئی ٹیل یو پہلے کیا تھا، ہم جانتے ہیں نا، اتنی کتابیں، دو سینکڑوں کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہے، گیان کی اتنی ہم پڑھتے ہیں، ابھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں کبھی، اتنی ونڈر فل آپ لوگوں، گیان سدا ون، گیان سدا ٹو، گیان سدا تھری، گیان سدا چار، ونڈر فل کتابیں ہیں، پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو. اس میں گیان بھی ہے، یوگ بھی ہے، سیوا بھی ہے، دھارنا بھی ہے، دیوی گنوں پر بھی ہے، سب ٹاپکس پر ان کے وچار لکھے ہوئے ہیں، بہت ونڈر فل ہے. خیر اگر باپ دادا نے بہت پالنا کی ہے، لیکن اس کو سادھارن طریقے سے انہوں نے بہت لکھا ہوا ہے. ایسے بھائی کے ساتھ ہمیں تین چار سال رہنے کا موقع ملا، پھر پورا جب تک وہ زندہ رہے ان کے ساتھ سیوا کرنے کا بھی بہت موقع ملا. وہ سیوا کہتے تھے، ہم سیوا کرتے تھے، رہتے تھے اور جگہ کرتے تھے. اس پرکار سے پھر ایک دفعہ ہم چترشالا بنی، ہمیں لوگ ماں باپ سے ورثہ ملا، ہم نے چترشالا کھولی. ان دنوں میں بامبے میں ایگزیبیشن نکلی تھی، فٹافٹ ہم نے کاپی کر کے وہ چترشالا بنائی. تو پہلا سیٹ ہم بابا کو دکھانے کے لیے، 20 چتروں کا سیٹ دکھانے کے لیے بابا کے پاس ہم آئے. اس وقت یہ حال جو تھا، کون سا یہ ہسٹری حال بن چکا تھا، شاید مما تھی یا یاد نہیں مجھے، تو بابا مما یا دیدی سارا وہ دیکھنے کے لیے آئے. دیکھا، پہلی اٹمپٹ تھی، بڑے بابا کو اچھا لگا، پھر مجھے بلایا بابا نے اپنے کمرے میں. کمرہ میں دیکھا نا بابا کا، ابھی جاتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، ایک چار پائی ہے اور ایک گدی ہے، نیچے ایک خالی جگہ ہے. تو نیچے میں بیٹھنے لگا، بابا نے کہا نہیں نہیں بچے، گدی پر بیٹھو، آؤ گدی پر میرے ساتھ بیٹھو. میں پھر بیٹھنا پڑا گدی پر، بڑے ہچکچاتے ہوئے. بابا کے وردان دیکھیے، زبردست وردان. بابا نے کہا بچے، جو باپ کی گدی سو کس کی، بولو، بچوں کی گدی. یہ ماں باپ کے. اتنا نہیں، پھر آگے کہا، یہاں بھی اور وہاں بھی. وہاں کہاں، کہاں، گولڈن ایج میں. تو یہ ایک وردان دیا، بچے جو باپ کی گدی سو بچوں کی گدی، یہاں بھی اور وہاں بھی. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ ہمارا، بھلے بابا ویکت ہو گئے، جو بابا کا کاروبار ہم بچے سنبھال رہے ہیں، ہے نا، یہ سیوا کے اندر کس کے ہیں، بولو، بابا کے ہیں. تو بہنیں وہ گدی سنبھال رہے ہیں، آپ کا گھر بھی کس کا ہے، بولو، بابا، سمجھو بابا کا ہے. بابا نے کہا تیرا، میرا نہیں تیرا ہے، میں ان کو سنبھال رہا ہوں، ایسا سمجھنا چاہیے، تو بڑی مدد ملے گی. تو یہ کیا ہوا، یہ وردان ملتے ہی بہت بہت امنگ، اتساہ، انتھوزیازم، بہت خوشی ہوئی. بابا ایک بول رہا ہے تو اتنے چتر بنے، اتنے ایگزیبیشن بنی، اتنے وہ میوزیم بنے، اتنے میلے بنے. چترشالا جو ہم نے کھولی، اس سے بہت بہت سیوا ہوئی. اس کے پیچھے بابا کا یہ بڑا وردان تھا. بچے اس سمے یہی ایگزیبیشن ہی وہ طریقہ تھا سیوا کو آگے بڑھانے کا. جگہ جگہ ایگزیبیشن لگ رہی ہے، میوزیم بن رہے ہیں، پردرشنیاں بن رہی ہیں، کبھی کچھ بن رہا ہے، میلے ہو رہے ہیں، اب تو اور بہت طریقے آ گئے ہیں. تب یہ طریقہ تھا سیوا بڑھانے کا. تو ہمیں بڑی خوشی ہے بابا نے ہم کو یہ سیوا دی، اور ہم نے بڑے سچارو روپ سے سیوا کو کیا. چلتے چلے پھر ہمارے بھراتا جگدیش جی فارن جانے لگے، بار بار कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी यूरोप जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी ब्रिटेन जा रहे हैं। तो प्रिंटिंग कार्य पहले वो कराते थे, हम हेल्प करते थे। उन्होंने कहा अब आप इसको, इस कार्य को भी कराइए। तभी से फिर ये ज्ञान अमृत वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन का कारोबार भी उन्होंने हमें कहा आप संभालो, तो हमने संभालना शुरू किया। और 92 तक दिल्ली में हम ये कार्य करते रहे। और 92 में फिर हम जब देखा बहुत सेवाएं बढ़ रही है, मैगजीन बहुत बढ़ रहा है और प्रिंटिंग बहुत बढ़ गया, जगह छोटी थी हमारे पास, तो शांति वन में बड़ी दादी ने कहा अब आप यहां आ जाओ। तो 92 से हमने फिर ओम शांति प्रिंटिंग प्रेस यहां बनाया और यहां पर हम रहे, बड़ी दादी के साथ रहे काफी साल तक। रोज उनको मिलते थे, शाम को दादी कहती थी आओ, कोई मुरली सुनाती थी कभी वो, कभी हम पढ़ के सुनाते थे, कभी निवैर भाई पढ़ के सुनाते थे। और 10 बजे फिर हमें वो बाबा के कमरे पीछे बना हुआ वहां बैठ करके योग करके कहते अब 10, अब बस अब चलो अपने अपने पास। इस प्रकार बड़ी दादियों से, क्या दादियां थी, दादी थी हमारी। एक दफा बात की मैं, दादी आप, किसी ने कहा आपको तो बहुत इतना कारोबार संभालते हुए सिर दर्द होता होगा, कुछ होगा। बाबे दादी ने कहा नहीं, हेड मेरा वो है शिव बाबा, ना हमें तो न मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, न मनी चाहिए, न महिमा चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, हमें तो बाबा चाहिए। ये दादी के माँ बाप के, हम लोगों ने भी सीखा दादियों से ये, हमें भी क्या चाहिए, नो न मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, न मनी चाहिए, न महिमा चाहिए, हमको तो बाबा ही चाहिए, बस सब हो जाए। इस कार्य से हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोचा है कि एक हमारा आप सभी का लक्ष्य क्या है, अभी हमारा लक्ष्य बोलो क्या लक्ष्य है, क्या बनना है, बाप समान। कमाल है, बाप हमारे तीन है, एक समान तो आप होंगे ही होंगे, दूसरा बाप हमारा ब्रह्मा बाबा है, तीसरा बाबा है शिव बाबा है। बाबा कहते मैं शिव बाबा जैसा तो नहीं बनाऊंगा, वो अनलिमिटेड है। हाँ जो लिमिटेड है वो ब्रह्मा बाबा है। हाँ ब्रह्मा बाप समान बनना है तो कैसे बनेंगे ब्रह्मा बाप समान, थोड़ा अभी और 10 मिनट ले लेते हैं, आपके ज्यादा टाइम है। ब्रह्मा बाप समान कैसे बने, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वो करना पड़ेगा। आज भी था मुरली पद कब था, क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, मैं बताया ना आपको, पूरा तन मन धन जन सब दे दिया। तो आप कैसे देंगे, आप तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं अभी ऐसे, अभी ऐसा वक्त नहीं है, अपने घर को संभालो। बाबा ये भी कहते हैं, बाबा सुदामा की मिसाल भी देते हैं, जो आपका, लेकिन उसको अपना मत समझो बस। ये शिव बाबा का है, बाबा का है, मेरा नहीं है। अगर इतना भी आप करेंगे और जो कुछ भी आपके पास है वो सेवा में लगाएंगे तो मानो आप बाबा को फॉलो कर रहे हैं। क्या समझना है, मेरा नहीं, क्या मुरली में आया था, तेरा समझना है। अब देखो बाबा क्या बन गए, कर्मातीत फरिश्ता बन गए ना, है ना, कर्मातीत फरिश्ता, पुरुषार्थ करते करते बाबा थोड़ा ऊपर से ऐसे बन गए। मेहनत की, पुरुषार्थ किया, बहुत अपोजिशन सहन की। हम बताया आपको, जब बाबा सिंध में आए सारी दुनिया खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ, भाई बंद के खिलाफ, गवर्नमेंट भी कोई हाथ में नहीं। बताइए, एक मुझे एक अभी हमारे मैगजीन में का आर्टिकल कुछ साल पहले आया था, एक भाई आया था वहां का, गांधी राम का, मुझे कहे मेरे हाथ काट दो। अरे मैं क्यों काटू, क्या बात है, कहता है मैं इन 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 खराब हाथों से बाबा के मकान पर पत्थर मारे। उसने कहा, इतना पश्चाताप उसको हो रहा था, इतना बाबा को वो करना पड़ा, अपोजिशन सहन करनी पड़ी। तो मैंने कहा भी आप पत्थर मत, हाथ मत काटो, अब इन हाथों से कोई नेक काम करो ताकि बाबा की सेवा करो। उसके मुख से निकला ये, कि मैगजीन में भी आर्टिकल ज्ञान अमृत में आया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है, बाबा को भी हमें भी कुछ सहन करना पड़े तो झिझक की बात नहीं है। तन से मन से धन से वो सहन करना पड़ सकता है। तो बाप फॉलो फादर करना है तो क्या करना है, कि हमें कर्मातीत फरिश्ता बनना है। कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज क्या है आप मुझे बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज, बोलो कौन बोलेगा? आवाज नहीं आई, मैं नष्ट मुआ, वो तो आके ही होती होगी, नष्ट मुआ मान के तो फिर बाकी और रहा क्या, पहली स्टेज क्या है? देखो मैं बताऊं, आप सोचना आप पहली स्टेज पार किया कि नहीं किया। पहली स्टेज है विकर्मा जीत, कर्मातीत से पहले, कि अभी हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, होता है बोलो विकर्म पाप, अगर पाप हुआ तो ब्राह्मणों के देश से बाहर, नो विकर्म, ये तो सब पास है नहीं, पास पास है ना, बोलो हाथ खड़ा करो सब, देखो सारे पास है, कोई नहीं हटाते, कहता ये तो मामूली बात है, यानी विकर्माजीत, कोई विकर्म ना हो, पाप ना हो। सेकंड स्टेज क्या है? विकल्प अतीत, कोई विकल्प ना आए अब, ओहो अगर विकल्प आया तो क्या होगा, जो आपने सुबह शाम कोई बैटरी चार्ज किया है ज्ञान योग से, वो बैटरी डिस्चार्ज, सुना? विकल्पाजीत, विकल्प अतीत, विकल्प ना है कोई भी बुरा संकल्प, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह का विकल्प आना जिससे नुकसान होता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, दूसरी स्टेज तो ये है, इसमें भी पास होंगे, बाबा कहता है पास है, अगर बाप दादा ने कहा था इसमें मेरे बच्चे पास है तो आपको भी मैं समझता हूं पास होंगे। थर्ड स्टेज क्या है? व्यर्थ अतीत, व्यर्थ ना हो, फिर बाबा ने कहा था नहीं मेरे बच्चों में थोड़ा थोड़ा तो व्यर्थ है, ये बाबा ने खुद ही कहा, हाँ ज्यादा नहीं है थोड़ा व्यर्थ है, तो आप बताओ थोड़ा है तो ज्यादा है कैसे है, व्यर्थ है जी, हाँ या ना? बाबा ने भी कहा मेरे बच्चों में थोड़ा थोड़ा है, अब ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए, व्यर्थ किसे कहते हैं पहले ये भी सुनिए, दादी गुलदास जी ने क्लास कराया था, पहले हम कहते थे ये क्यों क्या कब कैसे कौन ये सब बातें आती, ये व्यर्थ है, दादी गुलदास जी ने ये कहा बच्चे कहा कि अगर अभी आप यहां बैठे हो आपको भोजन का ध्यान आ गया, ये भी व्यर्थ संकल्प, आपको दिल्ली का जहां भी किस शहर का उसका ख्याल आ गया, बिजनेस का ध्यान आ गया, ये भी व्यर्थ, व्यर्थ मीन जिस समय जो संकल्प चाहिए वो आना चाहिए वो ठीक है, बाकी व्यर्थ, बड़ी बात है ये तो भाई, कर्मातीत बाप समान फरिश्ता बनना कोई मासी का घर है क्या? इट इज ए बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है कि बाप समान फरिश्ता, नो इम्प्योरिटी, कोई लगाव नहीं, झुकाव नहीं, दबाव नहीं, इतना बाबा हमारा थे, एकदम सब तन मन धन स्वा, ऐसे अंत में क्या बोल उनके मुख से निकल रहा था, 9 बजे वक्त हुए तो 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले क्या मुख से ज्ञान अमृत टपक रहा था, वो ऐसी स्टेज चाहिए, वो स्टेज ऐसे थोड़ा बन जाती है, एकदम व्यर्थ अतीत, व्यर्थ आए नहीं, अच्छा व्यर्थ भी नहीं, उसके बाद क्या है फिर, व्यर्थ के बाद नो साधारण, साधारण अतीत हो, अब मैं साधारण कहता हूं, अब खाना खाना है ये कोई विकल्प तो नहीं, व्यर्थ भी नहीं, खाना तो आई, आपका हर एक संकल्प विशेष हो, विशेष संकल्प होना शुद्ध हो, कौन से है विशेष, बाबा ने बताया शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प कौन है, कौन से है बोलो, कौन से है बोलो, हाँ ज्ञान के, मैं कौन, ये विशेष है, समर्थ है, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, मस्तक मणि हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, ये विशेष है। ये समर्थ संकल्प है। ये संकल्प कहां का हूं, हीरो पाठधारी हूं, सुदर्शन चक्रधारी हूं, सब संकल्प है। ये परमधाम का वासी हूं, ये सब शुद्ध संकल्प है। ये बाबा ने बताया हमको, हमने किसी और से नहीं, बाबा ने बताया। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, अनंत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, खुश नसीब आत्मा हूं। ये शुद्ध संकल्प है, विशेष संकल्प है, ये समर्थ संकल्प है। अगर ये संकल्प हमारे रहते हैं, न व्यर्थ आएगा, न विकल्प आएगा, न वो आएगा नहीं। वो ये हम बता दें, मानव के मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, दो इकट्ठे नहीं रह सकते। दो संकल्पों में चाहे 100th of a second का अंतर हो, लेकिन दो संकल्प एक समय पर नहीं रहेंगे, या वो होगा या वो होगा। तो करना क्या, व्हाट इज योगा? आपने बड़ी भट्टी किया, योग किया है। योग क्या है? सब संकल्पों को हटाओ और इन समर्थ संकल्पों को लाओ। दैट इज योग है ना। आप हर वक्त बिंदु बन बिंदु को नहीं याद कर सकते। इन शुद्ध संकल्पों का समूह, इसका संकलन, इनका ये लाना मीन्स हम शुद्ध संकल्पों में रमण कर रहे हैं। जैसे क्या होगा, देखिए, शुद्ध संकल्पों में, पॉजिटिव संकल्पों में दो चीज मिलती है, एक पावर और एक प्योरिटी। हम बता दें आपको, सत्युग में क्या चाहिए, दो क्राउन। कौन से क्राउन? ऑफ पावर, लक्ष्मी नारायण को देखो, क्राउन ऑफ पावर एंड क्राउन ऑफ लाइट। ये इन पावरफुल पॉजिटिव शुद्ध संकल्पों से को इकट्ठा करने से ये दोनों पावर आ जाती है। व्यर्थ को खत्म करने से, विकल्प की बात तो छोड़ो, वो तो पुरानी बात होगी, वो बात छोड़ो। व्यर्थ भी नहीं चाहिए, साधारण भी नहीं चाहिए। अब भोजन कर रहे हैं, मिसाल सभी को सोचना चाहिए। भोजन करते समय कुछ सोचना पड़ता है आपको? विचार करो, अपने आप मुख में जहां अंधेरा हो, बिजली चली जाए, मुख में जाएगी रोटी जो भी जाएगी। कभी यहां तक कभी गई किसी के अंधेरे में? अपने आप जाएगी। यू आर नॉट टू थिंक, सोचना नहीं पड़ता। उस वक्त ये संकल्प, मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध संकल्प होना चाहिए। चलते फिरते, बाबा कहते हैं मुरली सुनने के बाद भी, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते क्या करना है, इन शुद्ध संकल्पों को इमर्ज करना है, लाना है। तो व्यर्थ आएगा ही नहीं। व्यर्थ आया मीन्स टाइम वेस्ट, और चलो उससे नुकसान नहीं हुआ, टाइम वेस्ट किया। मानो आपने एक स्कूटर ऑन कर दिया, वो किक लगा दी और न्यूट्रल पर रख दिया आपने, वो क्या वो जो होता है न्यूट्रल पर, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो ये व्यर्थ माने, भले पेट्रोल जाया जा रहा है और आपका कोई फायदा है नहीं, नुकसान के लिए फायदा तो है, नुकसान ही है। तो करना क्या है, अगर हमने कर्मातीत फरिश्ता बनना है, हमारा एक एक संकल्प जो है वो व्यर्थ ना हो, साधारण ना हो, परंतु समर्थ होगा, तो हम बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बन जाएंगे। और बहुत शुद्ध संकल्प है, अपने को याद करो, अपने गुणों को याद करो, अपने घर को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा के गुणों को याद करो, और अपने संबंधों को याद करो बाबा के साथ, अनुभूति करो। हम तो 9 संबंधों से याद करते हैं, अगर टाइम है तो बताऊं, मैं बताऊं 9 बाबा के साथ मेरे 9 संबंध है। पहला संबंध कौन सा है बताओ, कौन सा? बाबा, मदर। पहले माँ है हमारी, बच्चा तो माँ से पैदा होता है ना, बाप को थोड़ा होता है, बाप तो निमित्त बनता है, माँ है पहले। ही इज अवर डियरेस्ट मदर, हम क्या कहते हैं उसको, इमर्ज करते, ब्रह्मा बाबा सामने आता है। स्वीटेस्ट फादर, मीठा बाबा है, स्वीट होम स्वीट राजधानी का वर्षा देता है, हाईएस्ट टीचर, ऊंचे से ऊंचा टीचर है और सिंपल पढ़ाई है केवल छोटी सी, और देता क्या 21 जन्मों की राजाई पाते देता है ऊंचा। होलीएस्ट सतगुरु, सतगुरु हमारा पतत पावन है, हमारी पालना करता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स। अनफेलिंग फ्रेंड, कभी धोखा नहीं देगा, इतना ऐसा मित्र है हमारा, अनफेलिंग साथ निभाने वाला हमारा खुदा दोस्त है। फिर क्या है, सलोना साजन, साजन हमारा केवल बहनों का नहीं भाइयों का भी है ना, भाइयों का साजन, साजन कौन है बोलो, शिव बाबा आप तो नहीं हो ना, नहीं हम साजन है, हम साजन नहीं सजनी है, वो हमारा सलोना साजन है, श्रृंगार करता है ज्ञान और गुणों से, कहाँ ले जाता है पियर घर, कहाँ भेजता है ससुर घर भेज देता है, शिव में विष्णुपुरी में। फिर सलोना सुप्रीम सर्जन है, ज्ञान इंजेक्शन लगा के तन मन ठीक करता है। फेथफुल चाइल्ड, बच्चा भी वही है, देख लो आप, वही साथ निभाएगा और कोई निभाने वाला नहीं है, अंत में हमारी उंगली पकड़ के भव सागर पार कराता है। और नाइन्थ है मोस्ट बिलवेड माशूक, एकदम सदा सत्यम है, शिवम है और सदा सुंदर है। श्री कृष्ण भी सुंदर श्याम बनता है, परंतु वो सदा सुंदर है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप, अगर उसको आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो परमधाम में, यू विल फील कि इससे सुंदर और कोई चीज है नहीं। हम तो ऐसे करते हैं, परमधाम पहुंचे और शिव बाबा को देखते रहो देखते रहो देखते रहो तीसरी आंख से, यू विल फील अति इंद्रिय सुख का अनुभूति होगी, वो ये हमें तो होती है भाई, आप भी करना, अपने को आत्मनिश्चय करके परमधाम में पहुंचना और शिव बाबा को ज्योति बिंदु को देखना रेड लाइट के अंदर, गो ऑन सीइंग एंड सीइंग एंड सीइंग, आपको बहुत 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 अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी, जो कि केवल अभी संगम पर मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती है, न सतयुग में न त्रेता में न द्वापर में न कलयुग में, इस संगम पर ही हम अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अब करनी चाहिए, बाबा की याद में रहकर होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
भाई साहब जी का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करेंगे, जोरदार तालियां बजा करके, जो साकार में बाबा की बगिया के रूहानी फूल, और ऐसे रूहानी फूल जो अपनी खुशबू बिखेरने हम सबके बीच पहुंचे, और साकार में मम्मा बाबा के संग रहकर जो उन्होंने अनुभव किया वही अनुभव हम सभी को कराया। भाई साहब तो मम्मा बाबा के संग थे, पर सुनते समय ऐसे लग रहा था कि हम भी बाबा मम्मा के संग ही बैठे हैं। तो ऐसी रूहानी पालना देने वाले और ज्ञानियों की पराकाष्ठा को अपने जीवन में लाने वाले भाई साहब का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वही गीत याद आता है कि वो दिन कितने प्यारे थे और ये दिन कितने प्यारे हैं। शांतिवन से आप इतना समय निकाल के हम सबके बीच पहुंचे, तो आपके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। आपके आने से मन हमारा खिल गया, आपके आने से मन हमारा खिल गया, कष्ट तो आपको जरूर हुआ पर गौरव हमारा बढ़ गया, गौरव हमारा बढ़ गया जी।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव